नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान की निरंतर सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद तथा नवरोज की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने इस त्यौहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कई क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी हमले न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच संभावित ऊर्जा और खाद्य संकट पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब तक इस तरह के संकट से बहुत हद तक सुरक्षित है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि संवाद और कूटनीति के जरिए पश्चिम एशिया संघर्ष का समाधान निकाला जाना चाहिए।
भारत ने पक्ष को रखते हुए कहा, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा, उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान खत्म करने पर विचार कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। उन्होंने संकेत दिया कि अन्य देशों को होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में नेतृत्व करना चाहिए। श्री ट्रंप ने साथ ही चेतावनी भी दी कि किसी भी व्यवधान से वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर देहरादून में एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए विज्ञान आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है। श्री यादव ने बताया कि देश का वन क्षेत्र 2014 की तुलना में 13,669 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि कुशल कार्यबल को सशक्त बनाकर भारत न केवल अपने आर्थिक भविष्य का निर्माण कर रहा है बल्कि विश्व में भी योगदान दे रहा है। मुंबई में रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में योगदान देने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की जानकारी रखने और सॉफ्ट स्किल्स विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। कोवलम से टीएन सुरेश, पिरुमाडे से वी राथेश, माविलिक्कारा से अजमन, अरुविक्कारा से विवेक गोपन और चावरा सीट से केआर राजेश को टिकट दिया गया है। इस बीच पार्टी ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने या हटाने से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया है। ये कदम राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया गया है। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। मणिपुर के इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 आज से शुरू हुआ। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि में नवाचार, निरंतरता और भविष्य के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।